ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी आदरणीय भाइयों और बहनों का आज का जो थर्ड टेक्निकल सेशन है बिल्डिंग टीम स्पिरिट पर हार्दिक स्वागत है। कुछ वर्ष पूर्व सिएटल नामक एक शहर में एक ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इस ओलंपिक्स की अपनी एक विशेषता थी क्योंकि इस ओलंपिक्स में सिर्फ अपाहिज भाग ले रहे थे। इट वॉज मेंट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप पीपल। उसमें से एक ये इवेंट था 100 यार्ड्स डैश। स्टार्टिंग लाइन में 10 कॉम्पिटिटर्स थे। एवरीबडी हैड एन इंटेंशन टू विन, जीतना है, और वो सोच रहे थे कि कब उनको शॉट ऑफ द गन सुनाई दे और वो भागना आरंभ करें। जैसे ही उनको शॉट ऑफ द गन सुनाई देता है वो भागना आरंभ करते हैं, जो सभी अपनी अपनी रीति से अपाहिज थे। जैसे बीच में पहुंचते हैं तो उसमें से एक जो कॉम्पिटिटर था वो गिर जाता है और उसको बहुत जम के चोट आ जाती है। वो रोने लगता है, चीखने लगता है। बाकी सभी दौड़ने लगते हैं लेकिन उसका जो बाजू वाला जो कॉम्पिटिटर था ना, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका एक जो सहयोगी है, कॉम्पिटिटर है, गिर गया है और उसको उठने में मदद करता है। और यह दृश्य देखकर बाकी 8 जन जो दौड़ रहे थे वो भी रुक जाते हैं, पीछे आते हैं और इस कॉम्पिटिटर को उठने में सहयोग देते हैं और सभी हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ फिनिशिंग लाइन में पहुंचते हैं। यह एक सत्य घटना है। यह दृश्य देखकर सारा स्टेडियम उठ खड़ा होता है और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट करता है कि एक नई इतिहास की रचना रची गई। भाई, इसमें ऐसी कौन सी श्रेष्ठ बात थी जो हम कहें कि हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड? कौन सी ऐसी नई बात थी, कुछ बताएंगे आप? टीम स्पिरिट, यस। एनीथिंग एल्स? सहयोग की भावना, यस। फ्रेंड्स, जो हमें समझना है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन दिस लाइफ इज हेल्पिंग अदर्स विन रादर देन विनिंग फॉर आवरसेल्फ्स, इवन इफ इट मींस स्लोइंग डाउन एंड समटाइम्स डिविएटिंग आर डायरेक्शन। इस संसार में हर एक व्यक्ति स्वयं जीतने की कोशिश कर रहा है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो है दूसरों को जिताना। और शायद इसके लिए कभी हमें रुकना पड़ेगा या कई बार हमें डायरेक्शन को डिविएट करना पड़ेगा। माई डियर फ्रेंड्स, सच पूछा जाए ना तो ये आप ही का गायन है। ट्रांसपोर्ट में जो भी संबंधित भाई बहन है ना, आप ही का गायन है, क्योंकि आप ही वो हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यू आर द पर्सन फॉर होम दिस इज एप्लीकेबल, राइट? अभी जो हम टीम के बारे में देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज अ टीम, राइट? सिंपल सी डेफिनेशन है, हम कॉम्प्लेक्स नहीं करें। पीपल डूइंग समथिंग टूगेदर, कुछ लोग एक साथ मिलकर अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसको टीम कहा जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका भी तो एक बहुत बड़ा टीम है, राइट? फ्रॉम बुकिंग टिल वो जो पैसेंजर है या गुड्स है अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, राइट? लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें समझना है। हियर द वर्ड समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द वर्ड टूगेदर। हम क्या कर रहे हैं वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम साथ मिलकर कर रहे हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टीम। एक और डेफिनेशन को हम देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सबका लक्ष्य एक हो और उसके लिए सभी प्रयत्न करें तो उसको भी टीम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम, राइट? एनी अदर एग्जाम्पल्स? अभी वही से मत चालू करिए, कुछ और कुछ बताइए, नहीं तो पूरे कितने भी स्पोर्ट्स है ना। हाँ जी, अच्छा देखिए, रिसर्च टीम है ना, कुछ रिसर्च करना होता है तो उसको भी एक टीम कहा जाता है। रेस्क्यू टीम, कई बार होता है ना फायर फाइटिंग के लिए जब कोई समाचार मिलता है, सो मेनी पीपल इन्वॉल्व वो रेस्क्यू के लिए, राइट? हाँ जी, टीम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शायद इसमें आप सभी बहुत इन्वॉल्व होंगे। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपका टीम है चाहे वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना हो या एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो. टीम वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, राइट? टीम फॉर सेलिब्रेटिंग गणेश उत्सव, बॉम्बे में बहुत फेमस है. अभी से तैयारी हो गई, कौन कमिटी मेंबर्स होंगे, कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? और जो बहनें हैं ना, वो सोचेंगे कि हमारा इसमें तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं. सबसे महत्वपूर्ण जो मैं फोकस करता हूँ वो है फैमिली, विच इज मेकिंग अ लाइफ फॉर इट्सेल्फ. सबसे जो फंडामेंटल टीम है वो है हमारा परिवार. ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. अच्छा, क्या ट्रांसपोर्ट एक टीम है? क्या कहेंगे आप? यस. क्यों क्यों? यस यस. अच्छा अच्छा, अभी देखिए, व्हाट डज ट्रांसपोर्ट मीन? हाँ, यस जेंटलमैन, इट सेज टीम. ध्यान से देखना और शायद नोट करना, टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन. द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड एक्शन लिया है. फॉर सक्सेसफुल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग द टारगेट. लेट मी रिपीट, टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, फॉर सक्सेसफुल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग द टारगेट. हम किसको टारगेट में पहुंचा रहे हैं, इट्स टोटल डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. शायद कुछ एप्लीकेशंस होंगे जहां पे आप पैसेंजर्स को पहुंचाते हैं, कहीं पे होता गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाते हैं, कुछ जगह होते यूटिलिटीज को पहुंचाया जाता है, वॉट एवर इट इज. बट इट्स अ टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, फॉर सक्सेसफुल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग द टारगेट. अब प्रश्न उठता है, वॉट इज टीम बिल्डिंग, राइट? It's a process of enabling that group of people to reach their goal. Team समझ में आ गई है. अभी team building क्या है? वो एक process है जहां से सभी लोग अपने लक्ष्य तक साथ पहुंच सके. That is what is very important. इसमें कुछ एक process है. Get. सबसे पहले अगर हम team leader हैं तो हमें अपने team members का बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए. एक अच्छी बात बताता हूँ, एक बार मैं इसी टीम बिल्डिंग के ऊपर लेक्चर ले रहा था. डेढ़ घंटे के लेक्चर के बाद एक वन जेंटलमैन आया और उन्होंने कहा, ये जो लेक्चर जो था ना, आपको मैनेजमेंट को सिखाना चाहिए था. हमने कहा, वो क्यों? बोले, नहीं, ये तो सब उन्हीं के लिए ज़रूरत है ना, वही टीम लीडर्स हैं. तो हमने उनसे एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपके पास कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? बोला, एज ऑफ नाउ आई एम अ मैनेजर, मेरे पास करीब 25 जो हैं वो हमको रिपोर्ट करते हैं. मैंने कहा, आप वो 25 के लिए आप टीम लीडर नहीं है क्या? तो उसने कहा, हाँ यस. तो हर एक जो है, आप ये ध्यान दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ हाँ आपको वहां बुलाएंगे और मैनेजमेंट को ये लेक्चर देना. नहीं, आप हर एक जो है टीम लीडर हैं, और ये विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, राइट? तो पहले हमारे टीम मेंबर्स के वीकनेस, स्ट्रेंथ्स बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए. सेट. अभी सभी आ गए, अभी हमको उनको गोल बताना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हम भाग रहे हैं. हमारा गोल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट इज गो, मतलब विद इन अ टाइम फ्रेम. अगर कोई टाइम फ्रेम नहीं है ना, इनडेफिनेट कार्य चलेगा तो उसको भी सही डेफिनेशन ऑफ टीम नहीं कहा जाता है. अपने टीम मेंबर्स को एक बात बताना बहुत जरूरी है, या तो हम साथ साथ तैरेंगे नहीं तो साथ साथ डूबेंगे. ये बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा. आइदर वी स्विम टूगेदर और सिंक टुगेदर. आज की जो सेटअप है उसमें से एक भी व्यक्ति स्वयं गाड़ी को आगे लेके नहीं जा सकता, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है. इसलिए अगर हमें आज के इस कंपटीशन में सर्वाइव करना होगा, खुद की सर्वाइवल के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, तो हमें ये बताना पड़ेगा, आइदर वी स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर. 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉर टीम बिल्डिंग, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? What are the 7 golden principles? Let us all revise it. With due respects, आप सभी हमसे भी बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, जो इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुके हैं. आप जब ये सुनेंगे तो आप कहेंगे, हाँ ये सब तो बहुत कुछ चीज़ तो हमें मालूम है, राइट? इसलिए हमने कहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट एस ऑल रिवाइज इट. थोड़ा समय के लिए हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि जैसे हम कल मेमोरी के बारे में बता रहे थे ना, जब तक हम रिवाइज नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो हमारी बुद्धि पर वो बैठता नहीं है. right? So can you all agree that we'll all revise together?
Yes.
Very good, thank you. The first principle, leadership through vision, right? The empires of the future are the empires of the mind, right? आपने सभी कोलंबस का नाम सुना होगा. उनको पता चला कि भारत जैसा एक बहुत सुंदर प्रदेश है, तो भारत को मुझे देखना और उसको कैप्चर करना है, और अपनी एक बहुत टीम को लेकर वो आगे चल पड़े. ही स्टार्टेड सेलिंग. लेकिन काफी दिनों के बाद उनके जो सोल्जियर्स थे, टीम मेंबर्स थे, उनमें काफी हो गया, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंच नहीं रहे. एंड इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ म्यूटिनी, युद्ध के स्थिति पर आ गए. लेकिन कोलंबस ने एक बात उनको बताई, जस्ट मुझे आप 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन तक अगर हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे तो हम वापस मुड़ जाएंगे. और 3 दिन के अंतर उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया. इसलिए बहुत अच्छी बात बताते हैं, इफ यू डोंट लूज होप यू डिस्कवर योर अमेरिकास. लेट मी रिपीट, इफ यू डोंट लूज होप यू डिस्कवर योर अमेरिकास, राइट? तो लीडरशिप थ्रू विजन, सबसे पहले हमारे में क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है. चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो फैमिली टीम क्यों ना हो, लेकिन ये फैमिली का भी लक्ष्य क्या है, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. नंबर वन, विजन इज द आर्ट ऑफ द इनविजिबल. कई बार होते जो लीडर्स विजन देते ना, तो लोग कहते नहीं नहीं यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे. और ये समय हम एक ऐसे ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट को याद करेंगे, लेट श्री धीरूभाई अंबानी. ही स्टार्टेड विद 2.8 लाख इन्वेस्टमेंट, और आज उसका 65,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है, राइट? उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इन जामनगर, जब वो उसकी बात कर रहे थे, उन्होंने ये जामनगर प्लांट के लिए काफी कंसल्टेंट्स, फॉरेन कंसल्टेंट्स को बुलाया था कि वेदर द प्रोजेक्ट इज वायबल और नॉट, ये प्रोजेक्ट चल सकती है कि नहीं. आपको शायद मालूम होगा कि पूरे फॉरेन कंसल्टेंट्स ने कहा नो, इट कैन नॉट बी वर्क, ये पूरा फ्लॉप होने वाला है. लेकिन वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको क्लियर कट था कि नो, वो अपने आंखों के सामने वो चित्र देखते थे कि कैसे जामनगर का प्रोजेक्ट सफल होगा. और आज हमारे सामने वो क्लैरिटी है. सबसे पहले जब राइट ब्रदर्स ने ना पक्षियों को उड़ते हुए देखा, उनके मन में क्या संकल्प चला कि एक दिन मनुष्य भी इसी तरह उड़ सकता है. लोगों ने क्या कहा होगा, दिमाग ठीक है, इज योर ब्रेन ओके? विजन इज द आर्ट ऑफ द इनविजिबल. जो दिखता नहीं है उसको अगर कोई देखे तो उसको विजन कहा जाता है. इसलिए धीरूभाई अंबानी जी का 2 वर्ड था, वी फॉर विजन, वी फॉर विक्ट्री, द 2 V's, जिसके कारण वो इतना सफल हुए. वी हैव गॉट टू थिंक अबाउट बिग थिंग्स व्हेन वी आर डूइंग स्मॉल थिंग्स, सो दैट ऑल स्मॉल थिंग्स गो इन द राइट डायरेक्शन. ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्थापक हैं, जिनकी कल आपने जीवन कहानी सुनी, ब्रह्मा बाबा, 65 वर्ष पहले उन्होंने विजन सेट किया था. उनका विजन बहुत क्लियर था कि एक दिन मुझे इस विश्व को परिवर्तन करना है. 65 वर्ष के बाद भी अब कोई भी बीके भाई या बहन से पूछेंगे ना, उसी नशे के साथ कहते हैं जो ब्रह्मा बाबा के पास नशा था, कि नहीं, हमें विश्व को परिवर्तन करना है. और ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत सिंपल सी बात बताई है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कार्य कितना, बहुत भाई बहन ने शेयर कर रहे थे हमसे कि मैनेजमेंट इज वंडरफुल. और कोई एक भाई तो एग्जाम्पल ले रहे थे, हमारे घर में छोटा सा एक फंक्शन होता है तो कितना तनाव हो जाता है, यहाँ पे इतना बड़ा कार्य चल रहा है पता ही नहीं चलता है. आप देखेंगे यही है, चाहे हम जितनी छोटा कार्य भी क्यों ना कर रहे हों, हमारी स्थिति महत्वपूर्ण है. आप अगर किचन डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तो भाई बहन उसी प्रेम, उसी ऊंची स्थिति से भोजन बना रहे हैं जितनी जो बहनें यहाँ पर राज्यों का शिविर कराते हैं, स्थिति सेम है. तो जब हम छोटे छोटे कार्य भी बहुत ऊंची स्थिति से करते हैं, वी गॉट टू गेट बिग थिंग्स. सेकेंड प्रिंसिपल, वॉक आर टॉक, राइट? गुड कम्युनिकेटर्स मेक बेटर मैनेजर्स. गुड कम्युनिकेटर्स मेक बेटर मैनेजर्स. एक बार क्या हुआ, जापानीज के प्रेसिडेंट थे, ही वॉज ऑन अ ट्रिप टू अमेरिका, तो उनको सिर्फ जापानीज लैंग्वेज मालूम थी. तो उनके जो कंसल्टेंट्स थे ना, एडवाइजर्स, उन्होंने उनको सलाह दी कि क्योंकि आपको जापानी सिर्फ मालूम है, लेकिन जब आप अमेरिका पहुंचेंगे और जब आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात होगा ना, तो अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते ना तो रैपो बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो इंग्लिश बोलना आता नहीं है। नहीं नहीं, इनिशियल स्टेटमेंट हम दो तीन आपको बता देते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, सुना नहीं क्या? उसने कहा हाँ। बोला बहुत सहज है, आप जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलेंगे तो बहुत सहज रूप से पूछना, राइट, हाउ आर यू, तो बहुत सहज स्वाभाविक आंसर जो वो देंगे फाइन, और वही प्रश्न वो भी पूछेंगे हाउ आर यू, तो बहुत सिंपल से बोलना सेम एज यू सर, समझ में आई बात? बोला हाँ, दो तीन स्टेटमेंट तो पढ़ना, कौन सी बड़ी बात है, प्लेन में बैठे लेकिन पहली बार इंग्लिश बोल रहे इसलिए बहुत डर लगने लगा, वो रटने लगा है हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू, और जैसे ही प्लेन पहुंची तो बेचारे की तनाव बढ़ने लगा, स्ट्रेस बढ़ने लगा, और जैसे ही व्हाइट हाउस में पहुंचे और जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट पूछे, इतने बेचारे डर गए थे कि हाउ आर यू पूछने के बदले हु आर यू पूछ बैठे। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मिनट सोचने लगा, अच्छा मेरे देश में मेरे व्हाइट हाउस में आकर मुझसे पूछ रहा है हु आर यू, तो उसने सोचा शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा ध्यान लगाया, तो जापानीज प्रेसिडेंट ने सोचा कि शायद सुना नहीं है, तो बहुत जोर से आवाज की हु आर यू। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को थोड़ा गुस्सा आया, तो उस समय हमारे मिस्टर बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उसने कहा आई एम द हस्बैंड ऑफ हिलरी क्लिंटन हु आर यू, सेम एज यू सर। राइट, इस तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कई बार हमको एक दो भाई बता रहे थे कि भाई साहब आपकी जो ज्ञान है ना बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन सिर्फ ये ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स तक ही सीमित रखिए तो ठीक रहेगा, आपको पता नहीं हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हैं? प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने दिमाग को प्रोग्राम कर दिया है कि अगर हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे तो जचेगी नहीं। इसलिए कहा जाता है वॉक और टॉक, सिर्फ हम बुद्धि से ना बोलें लेकिन वो हमारे कर्म से स्पष्ट हो, हमारे कर्म वो बताने चाहिए कि आप क्या बोलने वाले, इतनी सत्यता होनी चाहिए, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। मैं अपना एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ, 6.5 वर्ष पहले जब मैं सबसे पहले ये विद्यालय के संपर्क में आया, एक हफ्ते का शिविर कांडिविली में किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन टूरिंग जॉब था, एक दिन एक स्टेट में तो दूसरा दिन दूसरे स्टेट में, तो बहन जी अक्सर कहते थे स्वामी भाई ये हो क्या रहा है, आपको मालूम है राज्यों के लिए खान पान की शुद्धि बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा बहन जी वो थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है आपका बात, हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं खान पान की शुद्धि, और बहन ने ये भी बताया कि जहाँ तक हो सके तो होटल का भोजन स्वीकार ना करें क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छी नहीं है। तो हमने कहा बहन जी ये थियोरिटिकल आप बता रहे हैं, और इस तरीके से एक दिन बहन जी ने कितना भी समझाया हमारे बुद्धि पर उतरा नहीं वो बात। एक दिन बहन ने कहा स्वामी भाई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, अक्टूबर 1996, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने कहा कहाँ कॉन्फ्रेंस? बोला माउंट आबू। मैंने कहा कौन सी कॉन्फ्रेंस है? बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। हमने कहा कितनी फीस होगी? बोला नहीं स्वामी भाई फीस नहीं है, फ्री है। हमने कहा बहन जी मजाक मत कीजिए, हमने कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, फ्री तो आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं स्वामी भाई फ्री है। हमने कहा अच्छा आपका दिल इतना बड़ा है कि आप शायद मेरे फीस अपने पर्स से दे रहे हैं इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं 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 स्वामी भाई फ्री है, टू एंड फ्रो चार्जेस सिर्फ देनी है। मैंने कहा नहीं उसकी भी चिंता नहीं करो क्योंकि हम अपनी टूर इस तरफ से एडजस्ट कर लेंगे कि वो एडजस्ट हो जाएगा, अहमदाबाद एक क्लाइंट से मिले आते वक्त दूसरे क्लाइंट से मिले वो एडजस्ट हो जाएगा, तो वो भी फ्री। पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा फ्री का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि कई बार हम बॉम्बे में भी काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, राइट। एक बार हम एक वर्कशॉप में आए थे ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक स्पीकर आए और उन्होंने एक स्ट्रेस के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई, एक घंटे इतनी इंप्रेसिव क्लास की कुछ पूछो मत। एक घंटे के बाद वो कहते हैं अभी स्ट्रेस से कैसे रिलीव होना है उसको अगर आपको जानना है तो कल से हमारा 2.5 दिन का वर्कशॉप चालू हो रहा है, उसके लिए आप 2,500 रुपये प्लीज दीजिए। हमने कहा ये स्पीकर को इतना कॉमन सेंस नहीं है कि 2,500 रुपये सबसे ज्यादा मुझे तनाव दे रहा है, राइट। तो ये बात मुझे कभी जची नहीं कि बहन फ्री कैसे बोल रहे हैं। चलो बहन ने फ्री बोला तो मैंने चला घूमते घूमते आ जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो टोटली इम्प्रेस्ड हो गया और मैं एक जगह साइड में बैठ के सभी ऑब्जर्व करता था और मैं धीरे धीरे समझने लगा कि ये संस्था जो है ना दूसरे संस्था के समान नहीं है, और धीरे धीरे अपने पर ग्लानी होने लगी कि बहन कितने दिनों से अपने आप को सुधारने के लिए बोलते मैं सुनता ही नहीं था। एंड में जब निकलने वाला था तो बहन ने बुलाया और मुझे ना एक पैकेट दी। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोला नहीं रात्रि का भोजन है ना आपको ट्रेन में जरूरत पड़ेगा। मैंने कहा बहन जी आप क्या कह रहे हैं, 2.5 दिन में यार आज रहा यहाँ पे, जाने का भी आप भोजन दे रहे हैं? हाँ क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं ना कि बाहर का भोजन नहीं खाओ, तो बाबा के घर आए हो तो तब तक आप घर में नहीं पहुंचते वो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को इतना टच हो गया, मैं जो 16 घंटा ट्रेन में था ना इसी के बारे में सोच रहा था। और जैसे ही मैंने बॉम्बे उतरा मैंने अपने जीवन में एक संकल्प किया, मर जाऊं मिट जाऊं लेकिन जो बाबा ने श्रीमत दिए उस पर ही चलना है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म से अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दे मे फॉरगेट व्हाट वी सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ वी मेड देम फील। वो बहन जी और उन जो भाई बहन ने जो प्रेम उस समय जो मुझे दिया था वो आज भी मुझे याद है। हाउ दे मेड मी फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 मंथ्स बाई बिकमिंग रियली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन वी कैन इन 2 ईयर्स बाई ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन अस। समझ में ही बात, हम 2 महीने में अगर दूसरों के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। और मैनेजर्स जो है ना इस बात का बहुत ध्यान देना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, इंडियन एयरलाइंस के मैनेजर जो थे ना एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस शिफ्ट हो गए। और जब पहली बार वो शिफ्ट हुए, नए ऑफिस था, अपने नए कैबिन में गए, उनको बहुत प्यास लगने लगी तो उन्होंने देखा एक छोटी सी जो ना बेल थी, उन्होंने बेल बजाया तो एक प्यून अंदर आए। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा आप जरा मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आएंगे? प्यून ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोला क्यों? बोला पानी वानी लेकर आने का मेरा काम नहीं है। तो मैनेजर ने कहा फिर आपका काम क्या है? मेरा काम है फाइल्स आप तक लेकर आना, फाइल्स आपसे लेकर जाना। वो मैनेजर बहुत शांत था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उसके बारे में वो सोचने लगा। बोला ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ये ऑफिस पहली बार आया हूँ तो मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेनी है। अच्छा बताइए ये ऑफिस कब से आरंभ हुआ है? तो प्यून ने कहा 1960। कैन यू प्लीज गेट मी द फाइल ऑफ 1960 ताकि मैं स्टडी कर सकूं। नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव। प्यून जाता है और अपने स्टोर रूम में 1.5 घंटा तक है, ही ब्रेक्स हिज हेड, आता है फाइल लेकर, सर आपका फाइल। हाँ वेरी गुड यू हैव डन अ गुड जॉब। दूसरा दिन सुबह वो बेल बजाता है, जैसे ही प्यून अंदर आता है मैनेजर बहुत प्रेम से कहता है कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1961 टुडे। ओ माय गॉड, अभी वो कुछ कह तो सकता नहीं है। जाता अगेन स्टोर रूम में और 2 घंटे के लिए अपना सर को इतना गर्म करता है लेकिन 1961 का फाइल लेकर। वंडरफुल वंडरफुल, अरे आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, कीप इट अप कीप इट अप। तीसरा दिन बेल बजाता है, जैसे प्यून आता है कैन यू प्लीज गेट मी द फाइल ऑफ 1962 टुडे। ओ माय गॉड, फिर जाता है वो 3 घंटे का वही प्रोसेस करने के बाद आता है, उसको बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा आपका बहुत समय हो गया आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आई सी टू इट दैट यू गेट प्रमोटेड, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। चौथा दिन जैसे ही मैनेजर बेल दबाता है प्यून जो होता है ग्लास ऑफ पानी लेकर आता है, सर आप पानी पीजिए। गुड कम्युनिकेशन मेक बेटर मैनेजर्स, है ना। कई बार हम कम्युनिकेशन को इतना गड़बड़ कर जाते हैं कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। स्ट्रेंथ थ्रू सपोर्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक स्पीकर थे, ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने एक 500 रुपए की नोट निकाली और उन्होंने सभी ऑडियंस से पूछा अच्छा बताइए ऑडियंस में से ऐसे कितने हैं जो ये 500 रुपए नोट लेना चाहते हैं अगर मैं देने का इच्छुक हूं? तो नेचुरली ऑडियंस क्या कहेंगे, सभी हाथ उठाए, भाई 500 रुपए नोट कोई फ्री में दे रहा तो कौन ना बोलेगा। उसने कहा वेरी गुड, उसने क्या किया 500 रुपए नोट को थोड़ा क्रश किया और फिर पूछा अच्छा अब बताइए ये आप 500 रुपए का नोट कौन लेना चाहता है? लोग ने फिर भी हाथ उठाया कि भाई लेना चाहते हैं ना क्योंकि इसकी वैल्यू में तो कोई कमी नहीं हुई। फिर उन्होंने 500 रुपए का नोट जो क्रम्बल था ना उसको नीचे ग्राउंड में डाला और उसको बहुत अच्छे से क्रश किया, फिर उठाया, फिर कहा अच्छा अब बताइए आप में से कितने हैं जो ये नोट लेना चाहते हैं? पर भी बहुतों ने हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कमी नहीं हुई है। अगर हमें किसी को स्ट्रेंथ देना है तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और तब हम सपोर्ट कर सकते हैं जब उसकी विशेषताओं को हम आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपको मालूम है ये सीक्रेट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बताऊं, इतना सफल क्यों हो रहा है आपको सीक्रेट बता दूं? और अगर आप ये कंपनीज में इंप्लीमेंट करने लगे ना, तो एक दिन में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इतना प्रोग्रेस करेगा कि कुछ पूछो मत। एक गांव था, गांव के बाहर एक मोनेस्ट्री थी। मोनेस्ट्री समझते हैं, कुछ आश्रम, जापानीज या चाइनीज लैंग्वेज में मोनेस्ट्री कहते हैं। वहां कुछ मॉन्क्स रहते थे, साधु संत। अच्छा, करीब 20-25 साधु संत थे। उन्होंने देखा कि काफी वर्ष से ये जो संगठन है, आश्रम है, चल रहा है, लेकिन उनके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है। कुछ नया कार्य करने के लिए कोई उमंग नहीं था। जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। अभी जो उनके मुखिया थे ना, जो चीफ मॉन्क थे, उनको बहुत संकल्प चलने लगा कि अगर ऐसा चलेगा तो बहुत जल्दी ये आश्रम बंद हो जाएगा। तो एक दिन उनको पता चला कि एक बहुत बड़े विद्वान पंडित गांव में आए हैं और सभी अपने अपने प्रॉब्लम्स उनके पास लेकर जा रहे हैं और उनसे जो सॉल्यूशन मिल रही है। तो जो इनमेट्स थे, उन्होंने भी कहा कि आप क्यों नहीं वो पंडित से मिलते, शायद कुछ सॉल्यूशन दे देंगे। उन्होंने कहा जरूर। वो जाते हैं और वो पंडित से पूछते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हालत अभी गंभीर है, किसी को कुछ कार्य करने का उमंग उत्साह ही नहीं है। नंबर वन, विलेजर्स कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, कोई नए युवक इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसा अगर होगा तो एक दिन बंद हो जाएगी। तो पंडित ने 2 मिनट सोचा और उसने कहा एक मेडिसिन है। बोला बताइए क्या है। बोला आप में से ना 20-25 जो मॉन्क्स है ना, जो साधु संत रहते ना, उसमें से एक देवदूत है। कौन है, कौन है, प्लीज बताइए ना। बोला नहीं, वो एक जो देवदूत है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है ये जो आश्रम को फिर से बदल सकता है, परिवर्तन करने का, वो निमित्त बनेगा, प्लीज बताइए ना कौन है। नहीं नहीं नहीं, वो आपको ढूंढना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। बोला प्लीज बताइए ना कौन है वो व्यक्ति। मैंने कहा ना नहीं, मेरी मेडिसिन इतनी ही है, आपको पता लगाना है। वो आते हैं और सभी लोग पूछते हैं अच्छा बताइए उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने। उन्होंने कहा बैठो बैठो, सबको ऐसे गोल में बिठाते हैं। बोला अब बताइए। बोला वो पंडित जी ने कहा है हम में से एक जो है ना देवदूत है। कौन है, कौन है, बताइए ना। बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहा है कि हम में से ढूंढना है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये भाई सुबह से शाम तक गार्डन में काम करता है, इतना धूप खाता है, शायद ये देवदूत होगा। ये भाई जो सुबह से शाम तक किचन में काम करता है, इतना जो हीट खाता है, शायद ये देवदूत होगा। ये भाई जो पूरी फाइनेंस संभालता है और एक भी पैसा का इधर उधर नहीं होता, शायद ये देवदूत होगा। ये भाई जो इतनी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, शायद ये देवदूत होगा। और 2 मिनट के बाद सभी लोग की दृष्टि क्या हो गई, सभी एक दूसरे को देवदूत के रूप में देखने लगे। दूसरे दिन जब गांव वाले वहां से निकले, तो हर एक जो वो मॉन्क था ना, उनके चेहरे में इतनी चमक, क्योंकि उनमें एक दूसरे को वो देवदूत देखने लगे, इतना उमंग उत्साह कि फिर से आश्रम उठ खड़ा हुआ। जो ब्रह्मा बाबा ने हमको सिखाया ना, हर एक भाई या बहन की विशेषता देखो और हर एक की इम्पोर्टेंस है। ये हमने बनाया है ना, लेकिन माधव भाई नहीं होते तो शायद ये होता भी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंस है, हर एक भाई बहने की इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है, ये आप स्लोगन याद रखे, इफ एनीथिंग गोज बैड आई डिड इट, इफ एनीथिंग गोज सेमी गुड वी डिड इट, इफ एनीथिंग गोज रियली गुड, तो क्या कहना आप बताएंगे, या वंडरफुल यू डिड इट, राइट, आपने किया। जब बहुत अच्छा कार्य हो गया तो फिर कहिएगा कि आपने किया है, कुछ गड़बड़ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं पर लीजिए, वो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है। इसलिए जो सपोर्ट होते हैं ना, जो फॉलोवर्स होते हैं, वो अपने लीडर को देखो क्या प्रार्थना करते हैं, हे लीडर डोंट वॉक इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे सामने आप प्लीज मत चलिए, क्योंकि मैं शायद आपको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, आई मे नॉट फॉलो यू। डोंट वॉक बिहाइंड मी, आप प्लीज लीडर मेरे पीछे भी मत चलिए, क्योंकि शायद मैं आपको लीड नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हैं जो फॉलोवर्स होते हैं, वो अच्छे लीडर को क्या कहते हैं, वॉक बिसाइड मी, मेरे साथ चलिए, एंड जस्ट बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के रूप में आप चलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय ने आकर कहा आप कल छुट्टी पे क्यों थे, अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद फोन करके बोल भी दिया होगा। जैसे वो पहले आता है ना, तो आप उसको बहुत प्रेम से पूछा आपकी तबीयत कैसी है। अगर उसकी सचमुच तबीयत खराब नहीं होगी, तो फिर वो जीवन भर आपसे वो झूठ नहीं बोलेगा। जस्ट एक स्टेटमेंट आप पूछिए उनको, आपकी तबीयत ठीक है, आर यू ओके नाउ, बस जीवन भर वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्रैकिंग क्रिएटिविटी, अभी टीम को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मकता भी बहुत बहुत जरूरी है। हम वही कार्य करें जो सभी कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन समाप्त हो जाएगी। समय के हिसाब से हमें परिवर्तन करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, वन थिंग इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। परिवर्तन जो है वो निश्चित है, इट्स चेंज, राइट। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिन करना वो हमारे ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपोज एक छोटी सी बात बताते हैं, अगर आपको मालूम हो तो प्लीज मत बताना। सपोज मोहम्मद अली, मालूम है कौन है मोहम्मद अली? बॉक्सिंग, या राइट। वो अगर आ गए यहां पर और उन्होंने अपनी बहुत जम की मुट्ठी बंद करके रखी और उन्होंने आपसे एक प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए आप में से कौन है जो ये मुट्ठी को खोल सकता है? अगर आपको मालूम है तो प्लीज मत बताना। जो पहली बार ये सुन रहे हैं वो ध्यान से बताएं। सपोज मोहम्मद अली जो इतने बड़े बॉक्सर थे वो आ जाते हैं और अपनी मुट्ठी को बहुत स्ट्रांग ऐसे बंद कर देते और फिर वो आपसे पूछते, अच्छा आप बताइए कौन आकर टेक्निक बता सकता है इसको खोलने का? बताएंगे आप क्या क्या कर सकते हैं? जो भी करना चाहे स्टार्ट करिए। हाँ, वेरी गुड। उसको एक उंगली को ट्राई करें तो शायद पांचों खुल जाए, लेकिन कौन खड़े हैं आपके सामने? मोहम्मद अली हैं। फाइन, ठीक है, ओके, वेरी गुड सजेशन, गुड सजेशन। एनीथिंग एल्स? टिकल हिम, वंडरफुल, उसको टिकल करो, बहुत जम के टिकल करो। यस, वंडरफुल आइडिया। एनी अदर आइडिया? वंडरफुल, बहुत अच्छा सजेशन है। ट्राई करने में क्या हर्जा है? फिर बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस है उसको बाद में सोचेंगे। वेरी गुड, या आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू मैडम, या वंडरफुल आइडिया। यस, एनीथिंग एल्स? यस यस यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक ब्रदर। बहुत प्रेम से आप आइए और मोहम्मद अली से बोलिएगा कि मैं ना आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो नेचुरली आपने सुना ना, आत्मा का एक गुण है प्रेम, चाहे वो मोहम्मद अली हो चाहे कोई भी हो, बहुत प्रेम से उनके दिल को टच हो जाएगा, बोलेगा जरूर मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बोलेंगे फिर दोस्त क्या करते हैं, हैंडशेक देते ना, प्लीज हैंडशेक दीजिए, राइट। यस यस, तो इमेजिनेशन, यस इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, राइट। और लास्ट एक बात समझना जरूरी है, चैलेंज द नोन। रचनात्मक जो होते हैं वो चैलेंज करते हैं जो सिद्धांत है, और जो आज तक सिद्धांत नहीं बने उसको वो एम्ब्रेस करते, एक्सेप्ट करते हैं। एक बार एक राज्य था, उस राज्य में राजा को इलेक्ट करने की अपनी एक विधि थी। वो क्या करते थे, एक हाथी को भेज देते थे एक वरमाला के साथ। अब ये हाथी जिस भी व्यक्ति को चाहे ना उसके गले पे ये वरमाला डाल देते थे और वो व्यक्ति राजा बन जाता था। वाह, क्या वंडरफुल सजेशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट होगा ना सिर्फ 10 वर्ष तक राज्य कर सकता है। 10 वर्ष के बाद राज्य के बाहर ना एक बहुत बड़ा समुद्र था और समुद्र के बीच में एक आइलैंड था, द्वीप था, जिसमें बहुत जंगल थे, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, शेर, चीता, भालू, सांप। आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा, तो कोई राजा बनना चाहेगा? नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एलिफेंट जो था वरमाला लेकर चलने लगा, सब घर के अंदर, किसी को बाहर नहीं आना है, और मंत्रियां भी पीछे पीछे चल रहे हैं। सब ने देखा कि युवक जो है बहुत आत्मविश्वास के साथ है ना वो एलिफेंट के पास आ रहा है। एलिफेंट को भाई बहुत खुशी हुई, क्यों खुशी हुई, अभी ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा है ना। और जैसे ही वो युवक पास में पहुंचा तो उसके गले पर वरमाला डाला और मंत्रियों ने उसको दबोचा और उसको राज्य में लेके गए, राज्य महल में, और कहा हे युवक आज से आप राजन हो। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोला नहीं बहुत अच्छा नहीं, अभी सुनो पूरा कहानी, नहीं सुने आपने, 10 वर्ष तक सिर्फ आप राज्य कर सकते हैं, 10 वर्ष के बाद हम आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे वो आइलैंड में। आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा। बोला 10 वर्ष है ना, बाद में देखेंगे, प्रेजेंट में जिए ना हम। और 10 वर्ष तक ये राजा ने इतनी अच्छी तरीके से राज्य किया कि प्रजा इतने खुश, इतने खुश कि कुछ पूछो मत। लेकिन 10 वर्ष हो गया और प्रजा को संकल्प चलने लगा अभी क्या होगा। लेकिन संविधान क्या कहता है, नो वे आउट, ट्रांसपोर्ट करना ही है। तो एंड में सभी लोग रोते रोते वो राज्य के बाहर में, जहां समुद्र स्टार्ट होता है, और रोते रोते विदाई दी। और एक बहुत बूढ़ा नाविक जो था अपना नाव को लेकर आया और उसने बहुत प्रेम से राजन को कहा, सम्मान के साथ, राजन आप बैठिए। बहुत आराम से बैठा राजन, चलें? बोला हाँ चलो। और चलने लगा तो ये बूढ़ा नाविक ने पूछा, राजन एक प्रश्न पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोला राजन मैंने अपने करियर में कितने राजन को ट्रांसपोर्ट किया है, लेकिन जब भी मैं किसी को ट्रांसपोर्ट करता था तो वो राजा चीखता था, चिल्लाता था, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे नहीं जाना, मेरा जान को बचा लो। लेकिन आप ही एक राजा हो, राइट, जो बिल्कुल शांत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका राज क्या है राजन? तो राजन ने कहा देखो देखो, जैसे आप खुद अपनी आंखों से विश्वास करोगे। और जैसे ये नाव ना वो द्वीप में पहुंचा तो बूढ़ा नाविक अपने वृद्ध नेत्र पर विश्वास नहीं किया। उसने क्या देखा कि वही द्वीप जो जंगल और ये सब से भरा था, एक बहुत सुंदर राज्य महल। हे राजन ये मैं क्या देख रहा हूँ? राजा ने कहा इतनी सहज सी बात है, जैसे ही मैं राजन बना तो मैंने अपने गुप्तचर सैनिक को भेजा और कहा 10 वर्ष के अंदर वो फॉरेस्ट को क्लीन करो, मुझे एक राज्य महल वहां मांगता है। चैलेंज द नोन एंड एम्ब्रेस द अननोन, चैलेंज द नोन एंड एम्ब्रेस द अननोन। हम जब भी अपने टीचर्स को कहते ना एक दिन ये धरती है ना स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग बनेगा, आप उसको वैकुंठ कहो, आप उसको सतयुग कहो, आप गार्डन ऑफ एडन कहो, पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, बहिष्ट कहो, लेकिन ऐसी दुनिया आने वाली है तो लोग सोचते स्वामी भाई इट्स हाई टाइम यू गो टू अ मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन हमको विजन बहुत क्लियर है, जो बाबा का जो विजन है। और इतने भाई बहने यहाँ पे आते, छोटे से छोटा बच्चा का भी, और वो चैलेंज करता है कि दुनिया को हम परिवर्तन जरूर करेंगे। और जिस व्यक्ति का विजन होगा ना वो जरूर उसमें सफल होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में एक नई सेंटर खुली है जिसका नाम है सेंटर फॉर इनोवेशन स्टडीज। वो सेंटर इस तरीके से है कि कोई भी विद्यार्थी आ सकता है और कोई भी आइडिया दे सकता है, और IIT उस पर पैसा, समय और मनी इन्वेस्ट करने को तैयार है। एक दिन एक सुबह सुबह स्टूडेंट उठता है और कहता है सर मेरे पास एक वंडरफुल आइडिया आई है। अच्छा बताओ भाई कौन सी आइडिया है? सर मैं ऐसी सबर्बन ट्रेन को विजुअलाइज कर रहा हूँ जो चर्च गेट से विरार है ना, ये चर्च गेट और विरार जो है ना बॉम्बे के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो सबर्बन से कनेक्टेड है। मैं चर्च गेट से विरार ऐसी सबर्बन ट्रेन को देखता हूँ जो नॉन स्टॉप चले, जब भी लोग चाहें तो उसमें चढ़ सकते हैं, जब भी चाहे तो लोग उसमें उतर सकते हैं, उसमें से उतर सकते हैं। एंड प्लीज हंसिएगा मत, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा ट्रेन की कंसेप्ट आने वाली है। लेट अस चैलेंज द नोन एंड एम्ब्रेस द अननोन। लर्न थ्रू मिस्टेक्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन, बट इयर्स लेटर अ कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जब भी कोई गलती होती है तो पेनफुल जरूर होती है, लेकिन उससे हम अनुभव सीखे, उसको ही एक्सपीरियंस कहा जाता है। लेकिन एक और बात इसके साथ ध्यान देना है, सक्सेस डस नॉट मीन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स बट नॉट रिपीटिंग इट अगेन। ऐसे नहीं कि अभी कहा है तो हमेशा वही मिस्टेक करें, नो, एक बार गलती किए उससे हम सीख करें और उसी गलती को बार बार रिपीट नहीं करें। और अगर हमें सफल होना है ना तो अपनी जो गलती है, जो वीकनेस है, अगर हम उसको सबसे बड़े शक्ति के रूप में अगर हम परिवर्तन करें ना तो हम सफल हो जाएंगे। गांव में एक युवक था है ना, उसको ना ये रेसलिंग, मल्ल युद्ध, कुश्ती खेलने का बहुत शौक था, राइट। एक दिन वो रस्ते से चल रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो बायां हाथ है ना कट जाता है। जब वो ठीक हुआ पर भी उसके जीवन में उमंग उत्साह था कि मुझे कुश्ती खेलनी है, तो अखाड़े के गुरुजी से जाके मिले और कहा गुरुजी मुझे ना ये मल्ल युद्ध खेलना है, रेसलिंग सीखनी है। तो गुरुजी ने उसको देखा और कहा आपको इस बात का ज्ञान है कि आपका बायां हाथ नहीं है? बोला नहीं, मैं इस बात को जानता हूं और समझता हूं, पर भी मुझे ये रेसलिंग सीखनी है। तो गुरुजी ने कहा जरूर सिखाता हूं, और उसको डाउन पेज सिखाने लगे। लेकिन ये जो युवक था उसने एक बात को नोट किया कि गुरुजी सिर्फ एक ही दाव पेज उसको सिखाए। हमेशा उसके मन में संकल्प चलता था कि गुरुजी कब मुझे दूसरा दाव पेज सिखाए, नहीं, गुरुजी हमेशा उसको एक ही दाव पेज सिखाते थे। लेकिन इसमें वो एक्सपर्ट बन गए, एकदम मास्टर। उनका हमेशा संकल्प चलता था एक दिन मैं गुरुजी से पूछूं मुझे दूसरा दाव पेज सिखाते क्यों नहीं है। लेकिन इतना सम्मान था उनके प्रति कि उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी से प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुजी आए और ये युवक को कहा कि दूसरे गांव में ना कंपटीशन है, रेसलिंग की कंपटीशन, आपको भाग लेना है। युवक को इमीडिएटली रियलाइज हुआ, बाप रे कैसे मैं कंपटीशन में भाग लूंगा, गुरुजी ने तो मुझे एक ही दाव पेज सिखाया है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो जाता हूं। वहां गए, पहले राउंड में पहले कॉम्पिटिटर को ईजिली हरा दिया। संकल्प चंद्र मैं हराया कैसे था, दूसरे कॉम्पिटिटर मिले उसको भी आराम से हरा दिया। एक एक करके हराते गए, फाइनल में पहुंच गए। हमेशा उनको लगता था मैं जीत कैसे रहा हूँ, मैं जीत कैसे रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनल हुआ ना, तो उनके सामने बहुत एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया। अब उनको संकल्प चलने लगा, पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं। जैसे ही किया, विद इन 3 मिनट्स उसको पछाड़ दिया और उसको बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई, हीरो बन गया। दौड़ते दौड़ते आया, गुरुजी से कहा, उसके चरण छुए, कहा, गुरुजी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोला, पूछिए। आपने सिर्फ मुझे एक दाव पे सिखाया और मैं हर वक्त जीतता कैसे था, प्लीज़ बताइए ना। मैंने कहा, कितनी सहज बात थी, मुझे ये मालूम था कि आपका बायां हाथ नहीं है और मैंने आपको ऐसी दाव पेच सिखाई जिसमें आप मास्टर हो गए थे। आपको एक ही मूव मालूम था, जैसे ही ओपोनेंट आता था आप उसको पकड़ लेते थे। वो जो ओपोनेंट था, अगर उसको आपके ऊपर कंट्रोल करना था, उसकी एक ही विधि थी कि आपके बाएं हाथ को पकड़कर नीचे करे। लेकिन आपका बाएं हाथ था ही नहीं, वो आपके बाएं हाथ को ढूंढता था, मिलता ही नहीं था और हमेशा गिर जाता था। कन्वर्ट योर वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ, और जब हम अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट कर लेते तो इतना आत्मविश्वास आता है कि कुछ पूछो मत, है ना। यहाँ पे ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि चार्ट लिखते हम पूरे दिन में कौन सी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 97 में या 98 में मुझे याद है क्रोध मुक्त वर्ष डिक्लेयर हुआ था और उस समय मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही था। मैं अपने डिप्टी जनरल मैनेजर को क्लियर कट कहता था, सर व्हाई डिड यू डू MBA, यू आर नॉट सपोज टू डू MBA बिकॉज यू आर नॉट फिट टू डू इट, एंड इफ यू से यू हैव डन एन MBA इट्स बेटर यू अप्लाई योर प्रिंसिपल्स। इतना गुस्सा कि कुछ पूछो मत। मुझे याद है वो क्रोध मुक्त वर्ष में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया था कि हमको सबको रोल नंबर दी जाती है, क्योंकि ये एक विद्यालय है, बहुत सिस्टमैटिक विद्यालय है, अभी तो आप उसको ऊपरी स्तर पर समझ रहे हो। तो बहन ने ऐसा कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, अगर किसी को भी क्रोध आए ना तो शाम को आकर अपने रोल नंबर के इसमें एक राउंड फिगर कर देना। मेरा कितने महीने वो राउंड फिगर लगता गया। और फिर बहन पूछे एक दिन, स्वामी भाई हो क्या रहा है, हर दिन आपका वो राउंड फिगर लग रहा है। मैंने कहा, बहन जी पता नहीं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। बहन जी ने कहा, नहीं प्लीज़ आप निरुत्साहित नहीं होइए, एक दिन आप विजय अवश्य होंगे। आज मैं आपके सामने भगवान के घर खड़े होकर ये बात बताता हूँ, शायद पिछले 3 या 4 वर्ष से मेरे को आज तक क्रोध आता ही नहीं है, आया ही नहीं है। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ना कहते हैं बहुत गड़बड़ होते हैं, सबसे पहले मैं जाकर एक बहुत सिंपल डिक्लेरेशन देता हूँ, माई डियर फ्रेंड्स, आई एम अ सर विच विल नेवर गेट एंग्री, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, डिक्लेयर करता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि स्वामी सर कहीं क्रोध कर रहे, प्लीज ब्रिंग इट टू माई नोटिस। मैं स्टाफ मेंबर्स को कहता हूँ, कहते बाप रे अगर ऐसे करेंगे ना तो आपके सिर पर चढ़ जाएंगे वो, और मेरा अपना अनुभव है नहीं, दे बिकम सच वंडरफुल फ्रेंड्स, और इतने वो इमोशंस शेयर करते हैं, अगर हम उसको समझेंगे ना तो हमको लगेगा कि वो बच्चे आज किस पीढ़ी से गुजर रहे, सो मच ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम्स एट देयर रेसिडेंस, सो मच ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप विद देयर पेरेंट्स, बहुत टेरिफिक स्टेट ऑफ सिचुएशन है। और जब उनकी इमोशंस को मैं सुनता हूँ तो सचमुच मुझे एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण याद आता है कि एक दिन मैं क्लास ले रहा था, है लास्ट का लेक्चर था 2 से लेकर 3:30 बजे तक, जब मैक्सिमम जो बच्चे का क्या हालत होता है। एक बार ना एक स्टूडेंट से पूछा गया, अच्छा बताइए प्रोफेसर बड़े या माँ बड़ी। बोला, किसी भी हालत में प्रोफेसर बड़े हैं। बोला, क्यों? बोला, इतने सहज है, जब माँ लोरी सुनाती है तो सिर्फ 2 को सुलाती है, लेकिन जब प्रोफेसर लोरी सुनाते हैं 60 के 60 सो जाते हैं, राइट। अगर आपको कोई नींद आए ना तो बता देना प्लीज। तो मैं 2 से 3:30 का क्लास ले रहा था और मैंने देखा कि सबकी हालत एकदम गंभीर है, लेकिन एक स्टूडेंट मैंने साइड में देखा जिसका नाम था आकांक्षा, वो तो लिटरली ऐसे करके सो रहे थे और थोड़ी देर के बाद वो ऊपर उठते थे, फिर मुझे 2 मिनट देखते थे, फिर ऐसे सो रहे थे। मेरे को आया बहुत गुस्सा, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, नहीं मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। और फिर जब बाहर आया ना, जब मैं अटेंडेंस ले रहा था और जैसे उसका नाम है ना, अचानक उसने यस सर प्रेजेंट सर, मैंने कहा आकांक्षा थैंक गॉड कि एटलीस्ट अभी तो आप उठ गए हो। और मैं बाहर निकला तो पीछे आए, तब भी मेरा इतना बॉयल हो रहा था, लेकिन पर भी मैंने अपने आप को बहुत कूल किया। और जैसे ही स्टाफ रूम में आया तो शी वाज लिटरली शिवरिंग, जब वो स्टाफ रूम के अंदर आई थी ना ऐसा कांप रही थी, लेकिन पर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। मैंने कहा आकांक्षा मालूम है मैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ। बोला यस सर आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैंने कहा सॉरी कहने से क्या फ़ायदा है, व्हाई आर यू डूइंग दैट वे, इट्स अ रियल इंसल्ट टू अ टीचर, लिटरली स्लीपिंग और मुझे बीच बीच में उठ के घूरते हो फिर सो जाते हो, हैं व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। उसने कहा सॉरी सर इट्स अ लाइव इंसिडेंट। उन्हें कहा असल में सर दो हफ्ते पहले माई मम्मी एक्सपायर्ड, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग माई क्लास, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट वॉज लिटरली नॉट पॉसिबल फॉर मी। जस्ट इमेजिन, मैं एक मिनट के लिए पीछे गया कि अगर मैं उसको इधर उधर कुछ बोल देता तो जीवन भर मैं पश्चाताप की अग्नि में कपकपाता रहता था। और मैं उस समय बाबा को धन्यवाद दिया, थैंक बाबा कि आपने मुझे क्रोध से थोड़ा सा तो एक टीस्ट ऊपर उठा दिया है, राइट? लेट अस लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स मिस्टेक। कुछ तो हम सीखे जो हमारे पेरेंट्स ने गलती की है। प्लीज यूज बर्थ कंट्रोल। संसार की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि शायद टीम को हमें कुछ समय के बाद कंट्रोल नहीं करते बनेगा। इसलिए संसार में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोग स्टार्ट करते हैं विद पॉपुलेशन। इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रॉब्लम डिफाइन करो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। फरवरी 2002 हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने की, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए थे, राइट? हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर यूथ था और वो आए थे। हम उनसे इतना प्रभावित हुए, और जब मैंने उनको इंटरनेट में जाके देखा तो ज़्यादा प्रभावित तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि ही स्टिल अ बैचलर, ही स्टिल सिंगल। जब हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसे बन गए हैं तो हमें एटलीस्ट कुछ तो सोचना चाहिए और ये मैसेज दूसरों को जरूर पहुंचाना चाहिए। ओके, एम्पावर एम्प्लॉयज टू फील फ्री। अभी हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसको एम्पावर करें, उसको शक्तिशाली बनाएं। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, एम्पावरमेंट इज रियली जस्ट टेकिंग ऑफ द चेन्स एंड लेटिंग पीपल लूज। क्रेडिबल लीडर्स इन दिस डायरेक्शन आर लिबरेटर्स। हम उनको ना, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इतना फ्री रखें जो चाहे वो आकर हमसे पूछ सकते हैं, राइट? ऐसा एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं ये बोलता हूँ तो फिर वही कहते हैं, थियोरेटिकल इट इज़ गुड लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत टफ है। अरे भाई साहब, जब तक हम उसको प्रेशर नहीं करेंगे ना, आजकल का काम कुछ होता नहीं। यू एग्री विद दिस? You agree with this, friends? Yes. Yes, I also agree with you. Pressure is okay. क्योंकि जो है ना, Parkinson's law क्या कहती है? Work extends till the time available to you. जब तक समय हमारे पास available है ना, जब तक वो work भी extend होती जाती है। लेकिन हमें कुछ तो एक pressure देना चाहिए आपका काम वो समय के अंतर्गत होने के लिए। So pressure is not a problem. It is okay. वर्क एफिशिएंसी को समय के अंतर्गत करना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने एक बहुत बड़े फार्म हाउस में बहुत युवकों को बुलाया, और सभी युवक इकट्ठा हो गए तो उन्होंने सभी को अपने बहुत बड़े स्विमिंग पूल के पास बुलाया, और सभी खड़े थे स्विमिंग पूल के पास। उन्होंने क्या किया, उस स्विमिंग पूल में बहुत जहरीले सांप को डाल दिया, बहुत सारे। और फिर उन्होंने कहा, अभी सुनिए ध्यान से अनाउंसमेंट, मैं उस युवक की तलाश में हूँ जो एक एंड में जंप करे और दूसरे जंप से वो तैर कर निकले। अगर ऐसा कोई भी युवक है तो उसको मैं $20,000 दूंगा और मेरी जो बहुत सुंदर कन्या जो है, डॉटर है, उसकी शादी उस युवक के साथ करा दूंगा। और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, सबने छलांग करके एक शब्द सुना और एक युवक उसके अंदर, और किसी तरह हाथ छटपटाते हुए वो दूसरे एंड से बाहर उठ गया। सभी लोग बहुत प्रभावित थे, तालियां 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 तालियां। तो ये बिजनेसमैन भी बहुत प्रभावित हुए, वो युवक के पास जाके पूछे, ओ माय डियर यंग मैन, आप बहुत बहादुर हो, वेरी गुड, कीप इट अप। मैंने आपको वायदा किया था कि $20,000 दूंगा, उसके बदले मैं आपको $30,000 दूंगा, और वायदे के मुताबिक मैं अपनी जो सुंदर डॉटर है उसका शादी आपके साथ करा दूंगा। युवक ने कहा, ना तो मुझे $20,000 चाहिए, ना तो मुझे $30,000 चाहिए, आपकी सुंदर कन्या आप अपने पास रखिए, मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे धक्का मार के स्विमिंग पूल में गिरा दिया। प्रेशर इज ओके, नो प्रॉब्लम, जब तक धक्का नहीं मारेंगे ना तो गाड़ी नहीं चलती है। बट सर्टनली नॉट स्ट्रेस। प्रेशर ठीक है, कल भी बहन जी बहुत अच्छी बात बता रही थी, व्हेन प्रेशर एक्सीड्स द पर्सनल कैपेसिटी इट लीड्स टू स्ट्रेस। हर बार हम प्रेशर करें तो तनाव में आ जाता है, और यही प्रॉब्लम है। हम प्रेशर और स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमको लगता है हम प्रेशर दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इट इज स्ट्रेस. अमेरिका में एक बार हस्बैंड वाइफ पेपर में आया, दे आर सेलिब्रेटिंग द 25th मैरिज एनिवर्सरी, 25वां शादी की सालगिरह. अब अमेरिका में ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि वहां पे हैट्रिक सालगिरह भी कोई पहुंचा नहीं है. तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, सबने कहा उनको तो पब्लिक रिसेप्शन देनी चाहिए. और शाम के समय में उनको बहुत ग्रैंड पब्लिक रिसेप्शन रखी गई और बहुत फोटोग्राफर्स, मीडिया, टेलीविजन चैनल्स वाले आ गए. और सबके पास एक ही प्रश्न था, वो दंपति के पास, अच्छा आप बताइए 25 साल आप कैसे विदाउट डिवोर्स कैसे रह पाए, मुझे हमको ये बताना. बोला डिवोर्स तो बहुत दूर की बात है. पत्नी ने कहा पूरे 25 साल हमारे बीच में कोई मतभेद भी नहीं थे. माय गॉड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं, कैसे, प्लीज बताइए ना, वो राज हमको मालूम होना है. तो पत्नी ने कहा बहुत सहज था, असल में जैसे ही हमारी शादी हुई तो हम हनीमून ट्रिप के लिए एक बहुत अच्छे हिल स्टेशन में गए. हिल स्टेशन में गए ना, तो हमको और हमारे पति को हॉर्स राइडिंग की बहुत अच्छी अच्छा लगता था, इट्स अ हॉबी. तो हम एक हॉर्स के सामने बैठे और जस्ट हमारे पीछे हमारे हस्बैंड भी बैठे, आराम से हम हॉर्स राइडिंग चालू किए. थोड़ी देर हिल के ऊपर जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद जो घोड़ा था वो थक गया और अपने दोनों पैर उठाकर ये संकेत देने लगा कि आगे हम नहीं बढ़ सकते. तो पतिदेव ने बहुत जोर से चिल्लाया चेतावनी नंबर एक और फिर लगाम खींची और टक 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 ऊपर ही ऊपर. थोड़ी देर के बाद और घोड़ा थक गया, फिर अपने दोनों पैर उठाए, आवाज किया कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता हूं. तो पतिदेव ने फिर जोर से चिल्लाया चेतावनी नंबर दो, फिर लगाम खींची, फिर टक 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 टक. थोड़ी देर के बाद एकदम घोड़ा थक गया, ढम करके रुक गया नीचे. दोनों उतरे, पतिदेव ने एक पिस्टल उठाया, ठटाक, चेतावनी नंबर थ्री, ठटाक, दूसरा आउट. तो पत्नी ने पूछा हे माय डियर हस्बैंड, वो बेचारा जानवर था, आपने ऐसा क्यों किया, हम दोनों उसके ऊपर बैठे थे, इतनी वेट थी और इतना हिल स्टेशन में, कुछ तो रहम करना होता है. पति ने पत्नी से कहा आपके लिए चेतावनी नंबर एक. आपको क्या लगता है पत्नी ने कभी मौका दिया होगा चेतावनी नंबर दो का? नहीं. लेकिन ये समझना जरूरी है कि पत्नी को हमेशा तनाव जरूर होगा कि मैं अगर ये करूंगी तो कहीं चेतावनी नंबर दो ना आ जाए, ये करूंगी तो कहीं चेतावनी नंबर दो ना आ जाए. इसको कहते हैं तनाव. सो हम भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, राइट? टीम को और एक अच्छे शब्द से बताया जाता है. वैसे उस दिन भी गिरीश भाई ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी. उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी, कुछ याद है? टुगेदर ईच अचीव मोर. एम आई करेक्ट गिरीश भाई? यस, ये उसी की तरह है. टुगेदर एम्पावर टू अचीव मोर. क्योंकि जब तक एम्पावर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू अचीव मोर, राइट? Last and the most important step of team building is self-actualization. आपने मैस्लो की जो है ना नीड्स देखी होगी, मोटिवेशन, वो पांच स्टेप से बनी है. पहला स्टेप जो होता है फिजियोलॉजिकल लेवल में, जब किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए. दूसरा स्टेप है सिक्योरिटी, जब व्यक्ति को जॉब चाहिए होता है. तीसरा स्टेप होता है सोशल, जब व्यक्ति संबंध में आता है, इमोशंस. चौथा स्टेप होता है एस्टीम, जब उसको शान चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए. लेकिन अगर आप मैस्लो की वो देखेंगे पिरामिड, सबसे ऊपर है सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिन्होंने उनको कहा है. हम अक्सर बच्चों को कहते हैं आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए. क्योंकि ये जो पूरे पांच छह है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर हम वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेप में रहेंगे. इफ आई माइसेल्फ एम मोटिवेटेड, आई कैन मोटिवेट एनीवन एल्स, राइट? That is very very important. इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, learn to like oneself or change ourselves until I like myself. सबसे पहले मैं अपने आप को तो अच्छा लगने लगूं. अगर मैं स्वयं अच्छा नहीं लगता हूं तो अपने को परिवर्तन करें ताकि हम स्वयं अपने से प्रेम करने लगें. That is important. To know thyself is education. ये बहुत अच्छी बात है. किसने कहा ये? किसने कहा है? सोक्रेटस, जो बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, उन्होंने कहा है टू नो दाई सेल्फ इज एजुकेशन. एक अध्यापक होने के नाते मैं कहता हूं कि शायद हमारी एकेडमिक सिस्टम में कुछ एक मिसिंग डायमेंशन है जिसको देना बहुत जरूरी है. नहीं तो समय ऐसा आएगा जब खुद बच्चे आकर हमसे पूछेंगे पप्पा आपने किया क्या था ये समाज के लिए. एक बार एक कॉलेज बिल्डिंग को आग लग गई और जैसे ही आग लगी कॉलेज बिल्डिंग को तो फायर अलार्म बजाया गया और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भाग भाग के नीचे आने लगे. कॉलेज बिल्डिंग के सामने ना एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, और जैसे ही स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में ना सब डांस करने लगे। भाई क्यों डांस कर रहे थे? कोई क्यों डांस कर रहे थे? कॉलेज बिल्डिंग को आग लग गई और स्टूडेंट्स डांस कर रहे। हाँ, कोई स्टूडेंट्स होंगे तो बता सकते हैं। हाँ, अरे वाह, हाँ आप अपने बच्चों के इमोशंस को समझते हैं, वेरी गुड। उनको ये खुशी थी कि अभी दो ढाई तीन महीने तक तो कॉलेज चलेगी नहीं। अभी टीचर्स ने क्या देखा, एक स्टूडेंट जो साइड में बैठकर जिसका नाम था सुजन, रो रहा था, बहुत रो रहा था। टीचर्स को बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट सारे कॉलेज में एक तो विद्यार्थी है जो कॉलेज के प्रति कुछ तो शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। सभी टीचर्स गए और सुजन से कहा, सुजन हमें आपको रोते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे कॉलेज में एटलीस्ट एक तो विद्यार्थी है जो कॉलेज के प्रति कुछ तो शुभ भावना शुभकामना रखता है। सुजन ने कहा, मैडम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि कॉलेज बिल्डिंग को आग लग गई है, मैं यह सोच के रो रहा हूं कि अभी तक टीचर्स क्यों जिंदा हैं। एक भारत एक समय था जहां पे गुरुकुल सिस्टम, गुरु और शिष्य के बीच में इतना संबंध था, लेकिन आज वो क्या सिस्टम बन गया है, इस तरीके से कमर्शलाइजेशन हो गई है। हम किसी को दोष ना दें, हम सिस्टम को दोष दे के फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स पेरेंट्स स्वयं टीचर्स किस किस को दोष दे हम। समय आ गया फॉर एक्शन प्लान, और जो मिसिंग डायमेंशन है जो वर्षों पहले सॉक्रेटस ने कहा था उस पर फोकस करें, और जीवन कैसा परिवर्तन होता है और उसका रोल मॉडल आपके सामने है ये विद्यालय। आप इसको बहुत एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए, आप अपने बुद्धि को यूज कीजिए। आप सभी इंटेलेक्चुअल्स मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे एक्सेप्ट करें, नो, यूज योर जजमेंट पावर। आज बिंदु बहन जी ने भी बताया था ना, पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, जजमेंट लीजिए, देन यू विल बी एट द राइट डिसीजन। चैलेंज कीजिए, किसी भी बीके भाई बहनों को चैलेंज कीजिए आप कि नो योर सिस्टम इज नॉट राइट। हम ये जरूर नहीं कहते कि हर बीके यहाँ पे एकदम सर्वगुण संपन्न हो गया, नो, नेवर, वी नेवर मेड अ स्टेटमेंट लाइक दैट, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस। कई बार कहते नहीं आप बीकेस तो कहते बिल्कुल क्रोध नहीं आता, मैंने वो भाई को क्रोध करते हुए देखा था। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सर्वगुण संपन्न हो गए, लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना है, नंबर वन। नंबर टू, छह वर्ष पहले हमारी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति, वो जमीन आसमान का फर्क हम खुद देख रहे हैं हमारे जीवन में, उसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, राइट, दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन रिस्पेक्टेड फ्रेंसिस, डू आई नो हु एम आई, मैं जानता हूँ, क्या मैं ये जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेट अस डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड हु एम आई, क्योंकि आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं। ब्रदर आपका नाम क्या है, क्या या नहीं है, फर्स्ट नेम क्या है, हम किस नाम से आपको पुकारे, योगेश, अच्छा वंडरफुल नेम, आप आएंगे एक मिनट इधर प्लीज, आप आएंगे, हाँ एक माइक मिलेगा क्या हमको, आइए आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए।
योगेश भाई ना, वेलकम।
मैं कुछ एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जस्ट ऐसा, ये प्रश्न कुछ डायरेक्ट नहीं, बस टू रिलैक्स यू, राइट। अच्छा योगेश भाई, आप अपना परिचय देंगे कि आप कहाँ काम करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू ब्रिंग डाउन योर स्ट्रेस लेवल, राइट, फिर हम प्रश्न पे जाएंगे। आप अपना परिचय देंगे? अच्छा मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपका नाम तो योगेश है, आप कहाँ से आए हैं?
बम्बई से आया हूँ।
बम्बई, अरे वाह, हाँ सेम बम्बई, वेरी गुड। बम्बई कहाँ से,
मतलब वाशी से, नवी मुंबई वाशी से।
अरे आई एम टीचिंग इन वाशी, अरे दोस्त ही निकले हैं, देखो वाइब्रेशन कितने मैच होते हैं, राइट, अपनों के। अच्छा वाशी में कौन से सेक्टर में रहते हैं?
सेक्टर 9 में रहते
हैं। अरे कॉलेज भी हमारा सेक्टर 9 में, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, कहाँ सर्विस करते हैं?
इंडियन एयरलाइन।
ओह वेरी गुड, तो सांताक्रूज जाते हैं?
यस।
अच्छा कैसे जाते हैं आप?
ट्रेन से जाता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा आपको यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था, किसने आपको परिचय दिया?
ऐसे तो किसी ने भी नहीं दिया था।
हाँ फिर कैसे, अरे वाह, भगवान ने शायद डायरेक्ट,
शायद ऐसा ही लग रहा है मुझे।
लेकिन आप पहुँचे कैसे, किसी के थ्रू तो आए होंगे?
मेरे फ्रेंड्स से।
हाँ वही, फ्रेंड्स ने आपको क्या कहा था?
तो बोल रहे थे कि अच्छी है, अच्छा तुम जाके आओ, बहुत अच्छा है।
अच्छा अच्छा, आपको फील हो रहा है कि जो बोले हैं और जो थोड़ा कुछ थोड़ा तो सिमिलर,
यस बहुत कुछ।
ओके, नाउ आई थिंक योर स्ट्रेस लेवल इज ओके, अभी तो दोस्त बन गए, एक ही प्रदेश में भी रहते हैं, अभी क्या स्ट्रेस, राइट। मैं बहुत सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसको जस्ट समझने की कोशिश कीजिए, राइट। अच्छा आप अपना पेन देंगे मुझे,
ओके
सिंपल है. आप ये मत सोचना कि ये प्रोफेसर एकदम सिर घूम गया, क्रेजी प्रोफेसर जो स्टूडेंट्स अक्सर अपने टेबल पे लिखते रहते हैं, क्रेजी प्रोफेसर राइट. योगेश भाई ये क्या है?
पेन है.
सिंपल ना, सिंपल. मैं और कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा, सिंपल क्वेश्चन. पेन है. किसका पेन है? किसका पेन है?
पेन अभी तो मेरा है.
राइट, आप ही का. आप ही का पेन है भाई, वापस कर दूंगा ना. ये पेन है. किसका पेन है? योगेश का पेन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. लेकिन क्या आप पेन हो?
नहीं.
अरे भाई प्रोफेसर सचमुच आपका सिर घूम गया है, ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? इंडियन एयरलाइंस में काम करते हैं. डोंट फील आई एम क्रेजी है. ओके ठीक है.
ये हाथ मेरा है.
योगेश का हाथ है. लेकिन क्या आप हाथ हो? सेम, यूज द सेम लॉजिक नाउ. यह मेरा पेन है लेकिन मैं पेन नहीं हूं. यह मेरा घड़ी है लेकिन मैं घड़ी नहीं हूं. यह मेरा हाथ है. प्रश्न है क्या आप हाथ हैं?
नहीं.
नहीं राइट. और ये अगर हम पूछेंगे ये शरीर किसका है?
मेरा.
योगेश का है. क्या आप शरीर हो?
नहीं.
सिंपल. इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक बात कौन सी भाई छिपी है? सिंपल. छोटे से बच्चों को भी आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे. और यही सोक्रेटस कह रहे थे, हमें अपने आप को समझना है. अक्सर हमने क्या समझा कि मैं ही पेन हूँ, मैं ही वॉच हूँ, मैं ही हाथ हूँ और मैं ही ये शरीर हूँ. ये गलती हमने कर दिया. यूज दिस सेम लॉजिक. ओके अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ जो आप सभी जानते हैं. थैंक्स योगेश भाई, थैंक यू वेरी मच. हम कैन वी गिव हिम अ हैंड? या आई एम रिटर्निंग बैक हिज वॉच एंड पेन ऑल्सो. पेन ऑब्जेक्ट नंबर 10 यस्टरडे. इट इज हिज हैंड बट ही इज नॉट द हैंड. ओ आई डिड नॉट टेक हिज हैंड. या कम लेट्स अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. आखिर में मैं हूँ कौन ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है. एक बार मैंने बहुत एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस शायद यहीं पे अटेंड की था. मुझे एक बात जो उन्होंने कही ना जो एकदम दिमाग में टच हो गई थी ना? शायद मैं यहीं पे ट्रेनर द ट्रेनर्स में था, शायद गिरीश भाई जी ने बताया होगा. इतनी बात जज गई ना. कई बात ऐसे होते हैं जो एकदम दिल को छू जाती है. कि एक बार ना एक व्यक्ति पेशेंट जो था, एक व्यक्ति था वो स्कूटर से जा रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, है ना. तो डॉक्टर क्या कहता है? पेशेंट को अंदर लेकर आओ, राइट कहता है ना. और डॉक्टर उस पर ऑपरेट करता है. अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट जो होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. फिर डॉक्टर क्या कहता है? टेक द बॉडी आउट. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी. जस्ट इमेजिन कीजिए कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी अगर डॉक्टर ने रिलेटिव से कहा टेक द पेशेंट आउट, तो डॉक्टर्स की क्या हालत होगी? अच्छी धुलाई हो जाएगी उनकी, क्योंकि दे आर यूजिंग द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त शरीर. सो व्हाट इज द मिसिंग डायमेंशन, वो हमें समझना बहुत जरूरी है. सपोज एक व्यक्ति है जिसको समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, हैं? वो कहता है कि मेरे आंखें जो है ना मृत्यु के बाद किसी को डोनेट कर दे, मेरे हृदय किसी को डोनेट कर दे, मेरे किडनी किसी को डोनेट कर दे. और मृत्यु के बाद तुरंत एक और बॉडी होती है जिसको बायो कंपैटिबल बॉडी कहते हैं. मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हम कहीं पे भी फिट करें. नो, एक बायो कंपैटिबल बॉडी होती है. ये आंखें यहाँ बंद है, जैसे ही मैंने आंखें ली यहाँ फिट की तो देखने लगी. ये हृदय यहाँ बंद है, जैसे ही मैंने हृदय को लिया यहाँ फिट किया चालू होने लगता है, राइट है ना. और ये किडनी यहाँ कोई काम नहीं कर रही, किडनी को लिया यहाँ फिट किया तो किडनी काम कर रही है. तो एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है. हम बहुत आयरन बॉक्स होता ना या अग्नि होता है, हम टच करते साथ इमीडिएटली हम हाथ को निकाल लेते हैं. क्यों निकालते हैं? हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. कि यहाँ नर्व एंडिंग्स होती है जो हमारी बुद्धि को एक मैसेज देती है, भाई हाथ को निकाल दो. और मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर को अग्नि में डाल दो. उफ करती है? नहीं. तो जैसे ही वो एनर्जी इस शरीर से चली गई, तो जैसे दादी जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे ना, ड्राइवर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला है ना, और अगर कोई कहेगा गाड़ी पूरी इंश्योर्ड है तो कितना भी पत्थर मारो मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट? बिकॉज इट इज इंश्योर्ड, आई डोंट नो. लेकिन ड्राइवर तो सेफ है ना. और सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई पूछेगा कि गाड़ी भाई कैसी है? नहीं, सबसे पूछेगा ड्राइवर सलामत है. आप कहेंगे ड्राइवर सलामत है तो पूछेंगे गाड़ी, हाँ गाड़ी बहुत प्रॉब्लम, नहीं उसकी चिंता मत करो, जान है तो जहान है, कहते ना. इसलिए कहा जाता है जब भी आप स्कूटर चलाओ ना तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाओ. आजकल इवन आप जब कार में चलाते तो क्या कहते हैं? सीट बेल्ट. क्यों? क्योंकि अगर शरीर के और भी कोई अंग में प्रॉब्लम हो गया तो फिर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क को कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं रह सकते, राइट? आई एम एन एनर्जी, अ रेडियंट पॉइंट ऑफ लाइट. यह समझना बहुत जरूरी कि मैं एक शक्ति हूँ, अ सोल. मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ. दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अब प्रश्न उठता है, अच्छा स्वामी भाई अभी हमें करना क्या है बताइए, सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ. इट्स वेरी वेरी सिंपल. लेट ईच वन ऑफ अस इंक्लूड द ऑलमाइटी गॉड एज अ मेंबर ऑफ अ टीम. टीम है ना, इसमें हम उस भगवान को अपने टीम मेंबर के रूप में शामिल कर दें. कैन वी ऑल अग्री टू दिस सजेशन. अगर हमारे टीम में विजयी होना है और अगर हमारे टीम में एकदम सर्वशक्तिवान भगवान आ जाए तो वो टीम कभी असफल होता है? तो कैन वी अग्री टू ऑल दिस सजेशन फ्रेंड्स. क्या हम भगवान को अपने टीम में इंक्लूड कर दें? यस और नो? यस राइट. और उसके लिए जरूरी है लेट अस अंडरस्टैंड. अभी टीम मेंबर इंक्लूड तो कर लिए लेकिन इस भगवान को समझना भी बहुत जरूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंडरफुल टीम मेंबर एंड टीम लीडर. पहले बताया ना टीम लीडर को समझना बहुत जरूरी होता है, तो ये जो वंडरफुल गॉड है इसको भी समझना बहुत बहुत जरूरी है. समय था शाम के 7:15 राइट. स्थान था लंदन का बिजी रेलवे स्टेशन. एक यंग मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जॉन अपनी महबूबा का इंतजार कर रहा था, जिस महबूबा के विचारों से वो बहुत प्रभावित हुआ था लेकिन आज तक उसने अपनी महबूबा को देखा नहीं था. राइट. विचारों से बहुत प्रभावित था और वो ये सोचने लगा था कि मैं अपने महबूबा के विचारों से कैसे प्रभावित हुआ हूं. और फिर उन दिनों को याद करने लगा जब लेफ्टिनेंट जॉन एक बार लाइब्रेरी में गए थे और एक किताब देख रहे थे कि अचानक उसमें से एक छोटा सा एक नोट पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें किसी व्यक्ति ने कुछ पर्सनल नोट्स लिखे हैं. जब उन्होंने ये रीड किया राइट, तो उस विचारों से बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने लाइब्रेरी से पूछा जाकर, अच्छा बताइए इसके पहले किसने इश्यू किया? उन्होंने कहा उसका नाम है नैन्सी. अच्छा उसका कुछ एड्रेस पता चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, ईमेल एड्रेस है. इमीडिएटली जॉन ने नैन्सी को ईमेल किया और कहा कि मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, वंडरफुल, कीप इट अप. नैन्सी ने भी ईमेल भेजा और इस तरह विचारों का आदान प्रदान होने लगा और धीरे धीरे वो दोस्त बन गए. एक दिन जॉन ने कहा, नैन्सी प्लीज़ आप अपना फोटोग्राफ भेजोगे? तो नैन्सी ने कहा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ वी लुक बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ वी थिंक. हम कैसे दिखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम कैसे सोचते हैं. लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, वाह ये भी क्या वंडरफुल थिंकिंग है. राइट. कीप केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग ईमेल्स. और कुछ दिनों के बाद उनका एक दूसरे टाउन में पोस्टिंग हो गया. ईमेल के साथ संपर्क था और धीरे धीरे दोस्ती जो था वो प्रेम में बदल गया. जब वापस लेफ्टिनेंट जॉन लंदन आए तो उन्होंने नैन्सी से कहा, नैन्सी आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ. नैन्सी ने कहा, जरूर हम मिलेंगे. कहाँ पे मिलेंगे? लंदन रेलवे स्टेशन, समय 7:00. लेकिन जॉन ने कहा, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैंने तो आज तक आपको देखा नहीं है. नैन्सी ने कहा, बहुत सहज तरीका है, मैं अपने सिर पर ना बहुत सुंदर गुलाब का फूल पहनकर आऊंगी. इज इट क्लियर? वाह वंडरफुल सजेशन. और फिर जॉन सबको वहां पे वो देख रहे थे कि कोई एक सुंदर जो आएगी जिसके सिर पर एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल होगा. और अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर लड़की, अ वेरी ब्यूटी एंड प्रिटी प्रिटी गर्ल वॉकिंग टुवर्ड्स लेफ्टिनेंट जॉन. जॉन को बहुत लगा कि शायद यही मेरी नैन्सी होगी. और जैसे ही नैन्सी सामने पहुंची तो नैन्सी ने कहा, हे यंग मैन यू आर ब्लॉकिंग माई वे, आप मेरा रास्ता रोक के खड़े हो. तब इमीडिएटली जॉन ने उसको उसके सिर पर देखा लेकिन उसके सिर पर कोई गुलाब का फूल नहीं था. अचानक जॉन को बहुत जम के डिसअपॉइंटमेंट हुआ, निराश हुआ. और फिर वो नैन्सी जो वो बहुत ब्यूटीफुल कन्या जो थी वो जाते हुए देखता रहा. और जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक बहुत वृद्ध स्त्री 60 की बूढ़ी माता आ रही है और उसके सिर पर बहुत सुंदर गुलाब का फूल. जॉन को लगा जैसे पूरा आकाश और आसमान उनके सिर पर टूट गया है. जीवन एकदम निराशपूर्ण हो गया, एकदम हताश हो गया, टूट गया. फिर उन विचारों को याद करने लगा जिसके द्वारा उनकी दोस्ती बढ़ी थी. कितनी एलिवेटेड थिंकिंग थी, कितनी महान वो विचार थे. और फिर धीरे से उसने उस माता को देखा जो एकदम नज़दीक पहुंच गए थे. वृद्ध नेत्र, चेहरे में पूरी तरीके से झुरियाँ, लेकिन वो चेहरे में वो वात्सल्यता, वो कारुण्यता, वो बहुत प्रेम की भावनाएँ. जॉन उनके चेहरे को देखा, उनके विचारों को उन्हें स्पर्श किया और बहुत प्रेम से कहा, नैन्सी I am pleased to introduce myself as Lieutenant John. आपके विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन स्वप्न और संकल्प में भी मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने बुजुर्ग होंगे। मैं आपके अनुभव से और बहुत सीखना चाहता हूँ, बहुत जानना चाहता हूँ। क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट या गार्डन में जाएं, एक कप कॉफी पियेंगे और बहुत बातें करेंगे। बूढ़ी माता ने कहा, व्हाट नैंसी, मेरा नाम नैंसी थोड़ी ना है, एंड व्हाट आर आप ये बोल क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट, अगर आप नैंसी नहीं है तो आपने अपने सिर पर इतना सुंदर गुलाब का फूल पहन के क्यों रखा है। बोला, अच्छा ये सुंदर गुलाब का फूल, अभी अभी यहाँ से जो प्रिटी गर्ल गई थी ना, उसने ये सुंदर गुलाब का फूल मेरे सर पे रखा और उन्होंने एक बात कही कि माता जी, अगर कोई युवक आपसे मिले और अगर वो कहे कि वो आपके विचारों से प्रभावित है और आपसे बातचीत करना चाहता है, सीखना चाहता है, अगर वो आपको कहीं इन्वाइट करे तो उसे प्लीज कहना कि उसकी नैंसी सामने वाले गार्डन में उसका इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, टेल मी हुम यू लव एंड आई विल टेल यू हाउ यू आर। आप ये बताइए कि आप किससे प्रेम करते हैं और खुद पता चल जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम प्रेम के सागर से प्रेम करने लगे तो हमारा व्यक्तित्व कैसे बन जाएगा। वंडरफुल, प्रेम के सागर से अगर हम प्रेम करना आरंभ कर दें तो हमारे रिलेशनशिप इतने इम्प्रूव होने लगते हैं कि कुछ पूछो मत। और फिर हमने आपके प्रेम के वाइब्रेशंस उस परमात्मा तक पहुंच गए और वो आपसे कह रहे, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। भगवान गारंटी कर रहा है, आपने मुझे टीम मेंबर इंक्लूड किया ना, मैं आपका साथी हूं। एवर बेनिफैक्टर गॉड फादर शिव, विश्व कल्याणकारी और सदैव कल्याणकारी है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सदाशिव, सदाशिव, सदा कल्याणकारी, राइट। एंड हियर इज द गुड न्यूज, आप ये पॉजिटिव न्यूज को समझिएगा, सुनिएगा। द ऑल पावरफुल, द ऑल ब्लिसफुल, द ऑल मर्सीफुल गॉड हैज एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट टू जॉइन अस एज अ टीम मेंबर। हमको डायरेक्शन मिल गया, ही हैज एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट टू बिकम अ टीम मेंबर। और फिर वो कहते हैं, माई डियरेस्ट स्वीट चिल्ड्रेन, मेरे बहुत प्रिय मधुर बच्चे, आपका बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज एक्सेप्ट माई डिवाइन गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। वो डिवाइन गिफ्ट देते हैं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, और सिर्फ हम कह रहे हैं ना, वॉक आर टॉक, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको कर्म में लेके आना है। दूसरी बात जो मैं बहुत प्रभावित हूँ कि यहाँ पे जो भी आत्मा जितनी बार भी आती है उतनी बार दादी जी उनको सौगात देती है। हम शायद ना साल में 5 या 7 बार तो आते ही हैं, 7 बार आएंगे तो दादी जी 7 बार हमको गिफ्ट देंगे। हमने एक दिन बहुत उसके बारे में सोचा और अपने सीनियर भाई बहनों से पूछा, ऐसे कैसे होता है, तो उन्होंने कहा, ये कौन है देने वाला, दाता भगवान, वो डिवाइन गिफ्ट देने वाला है। आप तो सिर्फ 250 के संख्या में हैं, जब यहाँ पे ना BKS का जो कॉन्फ्रेंस होता है तो एक एक टर्न में करीब 15,000-20,000, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भगवान के घर से खाली होकर जाए। और जब भगवान इतना प्रेम से देता है तो क्यों ना हम एक्सेप्ट करें। देखो डिवाइन गिफ्ट क्या है, सक्सेस इज योर बर्थ राइट, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप नोट कर लीजिए, द ऑल पावरफुल टीम मेंबर, टीम लीडर ने ये वरदान आज हम सभी को दे रहे, सक्सेस इज योर बर्थ राइट, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रेंड्स, लेट मी थैंक यू राइट फॉर ईच एंड एवरी वन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो चालू वो भगवान से ही करना चाहिए, फिर जो भी हमारे श्रेष्ठ बहनें हैं, दीदियां हैं, श्रेष्ठ जो भाई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। हैव अ नाइस स्माइलिंग टाइम हियर राइट। एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा फिर आपको मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु बहन जी कितनी शायरी सुन रहा था तो मैंने सोचा मैं भी, है ना, संग का रंग लगने लगता है। एक्सक्यूज मी बहन जी, बात सुनिएगा इसको, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए राइट। बाय बाय एंड ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।